देवियों सज्जनों, इस हफ्ते दो बड़े पर्व हैं। एक तो परसों शिवरात्रि है और कल स्वामी दयानंद जी की जयंती थी। भारतीय हिंदू तिथि के हिसाब से फाल्गुन कृष्ण दशमी, जो कि 10 फरवरी को इस बार है, और अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 12 फरवरी को। स्वामी जी गुजरात में टंकारा में, मौरवी में, मौरवी एक पुराने जमाने का राज्य था, उसमें टंकारा गांव में पैदा हुए थे, ब्राह्मण परिवार में। उनका नाम मूल शंकर था, क्योंकि वो उनके पिता माता काफी शिव भक्त थे। शिव को काफी पूजा पाठ करने के बाद, काफी दिनों के बाद ये लड़का हुआ था और मूला नक्षत्र में हुआ था। क्योंकि शिव के भक्त थे तो शंकर दिया, क्योंकि मूला नक्षत्र में था तो मूल शंकर दिया। और उनके जीवन में जो चेंज आया जब वो घर छोड़ के भागे, वो भी शिवरात्रि के दिन, अगले दिन ही। ज्यादातर लोगों को वो स्टोरी पता है। बात है कि हम सब रोज कुछ ना कुछ ऐसा देखते हैं जो हमारा कॉमन सेंस नहीं मानता। हमारी अपनी जो भी छोटी मोटी रीजनिंग पावर है वो एक्सेप्ट नहीं करता। जो भी हम करते हैं, देखते हैं, रिलीजियसली, सोशियली, पर किसी भी कारण से हम फोर्स्ड होकर के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और रोज एक्सेप्ट करते 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 पता है ये झूठ है, गलत है, पर सोसाइटी के फ्लो में बहते बहते रोज एक्सेप्ट करते करते हमारी स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो जाता है कुछ सालों के बाद, फिर सवाल पूछना तो दूर, हम भी उसी के पार्ट हो जाते हैं। तो मोस्टली रिलीजियस चीजें आप देखेंगे जिसमें आपकी, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो कभी आप मानने वाले नहीं है और आपके बच्चे मानते भी नहीं है। आप भी बचपन में वैसे ही थे, क्योंकि बच्चा खुला होता है, उसके रीजनिंग पावर अभी भी स्ट्रांग है, वो यूज करता है। आपका भी स्ट्रांग है पर वो यूज करता है, छोटा बच्चा जो है वो लॉजिक लगाने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, जो समझ में नहीं आता है छोड़ देता है या मानता नहीं है। और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जबरदस्ती जिस चीज को वो बचपन में नहीं मानता था उसकी छोटी सी दिमाग में, नॉर्मल कॉमन सेंस जिसको एक्सेप्ट नहीं करता था, वो सबको वो अननोइंगली इनडायरेक्टली उसके अंदर इतना ज्यादा ठूस दिया जाता है फैमिली ट्रेडिशन कल्चर के नाम पर, वो बड़े होने तक उसका सारा कॉमन सेंस मर जाता है। अब हम कॉमन सेंस यूज करते हैं बार्गेनिंग करने में, मार्केट में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पर रियल लाइफ में या स्पिरिचुअलिटी में या रिलीजन में हम जब आते हैं तो ताला लगा कर आते हैं अपनी कॉमन सेंस को या बुद्धि को। और उसका परिणाम है दुनिया में इतने सैकड़ों, आज के डेट में 300 मोर देन 300 रिलीजियंस हैं, छोटे बड़े रूप में सब मिला करके, और सिवाय उसमें 90% जो है जहां आपकी कॉमन सेंस मानने को तैयार नहीं है पर लोग मानते चलते जाते हैं। तो शिवरात्रि के दिन भी स्वामी जी मूल शंकर 8-9 साल का लड़के के साथ भी यही था। शायद वो 25-30 साल तक ऐसा देख बिना रिएक्ट करके रह जाते तो रह जाते, फिर तो बाकी लोगों की तरह वो भी हो जाते, पर एज अभी टेंडर एज था जिसमें रिवोल्ट करने का काफी चांस होता है। उसके बाप तो माँ बाप का इतना प्रेशर रहता है ट्रेडिशन का, सोसाइटी का, बड़े से बड़े महा दिव्य आत्मा भी दबके आम इंसान बन ही जाता है। तो मूल शंकर को भी वही हुआ, शिवरात्रि के दिन लोग जागते हैं, उपवास करते हैं मंदिर में, उनके परिवार वाले भी मंदिर में बैठे हैं, उपवास कर रहे हैं। लंबी रात के बाद 12 बजे के बाद भोग प्रसाद चढ़ेगा, शिवरात्रि पूरी होगी। आजकल तो खूब भांग गंजा भी खाते हैं शिवरात्रि के नाम पर। तो सब लोग बैठे, बच्चे जैसे आपके भी बच्चे सवाल पूछते होंगे तो वो भी सवाल पूछते, तो क्यों जागते हो कि भगवान मिलेगा, भगवान को पाने के लिए ये करना पड़ता है, रात को जागना पड़ता है। तो इतने देर तक जागने की क्या जरूरत है, क्योंकि देर रात को ही भगवान दिखाई देगा। बड़ी उनको लगा कि ये सच बात है। ज्यादातर बच्चे 7-8 साल के होते होते समझ जाते हैं माँ बाप कितना झूठ बोलते हैं, समझ जाते हैं, फिर वो हां में हां मिला लेते हैं, अंदर माने ना माने ओके ठीक है। कुछ बच्चे मानते नहीं है, मतलब ज्यादातर बच्चे समझते हैं कि ये गलत है, माँ बाप जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं बोल रहे हैं, पर आप कितना रिवोल्ट कर एक्सेप्ट कर जाते हैं। पर रिवोल्ट करते हैं। तो मूल शंकर भी मान गए कि भाई रात को सच मान गए कि रात को भगवान दिखेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, इतने सारे हम सुनते रहते हैं। 10-11-12 बजते बजते परिवार वाले मंदिर में सो गए, जागते जागते नींद आ जाती है, प्रसाद रखा हुआ है सब जो भी नैवेद्य बना बना करके, ज्यादातर मंदिरों में जो होता है वही, कहीं कॉकरोच घूमता है, कहीं चूहा घूमता है, गंदगियां बहुत रहती है। तो जब सो गए तो चूहे का जो टाइम होता है 12-12 बजे, उसको पता है अंधेरे में वो निकला एक चूहा, और वो कभी शिवलिंग पर चढ़े उतरे, वो प्रसाद जो ढका हुआ है उसको दांत में इधर उधर करे, तो वो देखता रहा। अब रात देर होने लगी है, अब तो भगवान का आने का टाइम भी हो गया है, जो कि मेरे परिवार वाले बोलते हैं भगवान तो दिखाई नहीं दे रहा, और ये चूहा की क्या हिम्मत है, देखो शिवलिंग पर भी चढ़ गया है, अब जिसको हम पूछते हैं ये इस पर चढ़ जाता है, ये प्रसाद भगवान के लिए रखा है ये खा जाता है, कोई रोकने वाला नहीं, परिवार वाले भी सो गए और भगवान भी ऐसा है कि रोकता भी नहीं है। रात बीत गई, पूरी रात भगवान तो आए नहीं, ना किसी के आते भी हैं, पर मूल शंकर को ये हजम नहीं हुआ कि आपने कहा था रात को भगवान आएंगे इसलिए उपवास करते हैं, भगवान तो आए नहीं और रात भर चूहा खाता रहा, ऊपर नाचता रहा, कूदता रहा, पर कुछ हुआ नहीं। तो मुझे भगवान सचमुच जानना है, और ये जो प्रोसेस है ये मुझे समझ में नहीं आता है। वो तो आपको भी नहीं आता होगा, मुझे भी नहीं आता होगा, पड़ोसी किसी को भी नहीं आता होगा, पर फिर हम धीरे धीरे फैमिलियर हो जाते हैं। और सच बात है कि किसको फर्क पड़ता है भगवान मिलता है नहीं मिलता है, पैसा मिलने की बात हो तो कोई बात बनती और कोई चीज बात हो तो बात बनती, पर सबके साथ ऐसा नहीं होता है ना, हर एक की प्रायोरिटी अलग अलग है। जरूरी नहीं सबकी प्रायोरिटी पैसा हो, सबकी प्रायोरिटी भगवान भी हो, अलग अलग है। कोई लोगों की भला करने को सबसे बड़ा प्रायोरिटी मानता है, सब छोड़ छाड़ के सेवा में लग जाता है। हमारे यहां एक मित्र मिले, नाम नहीं लेंगे, अंदर बड़ी भाव है सेवा करने की, बोले मैं किडनी देना चाहती हूं। मैं भला चंगा, किसी ने मांगा नहीं, कुछ नहीं किया, क्यों देना चाहते, बस भाव है। तो कुछ लोगों की अलग अलग प्रायोरिटी है, किसी को समाज सेवा करने की, किसी को भगवान पाने की, किसी को ज्ञान पाने की प्रायोरिटी है। लोग सब छोड़ छाड़ के ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं, किसी को नई चीज खोज करने की, आपके साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर है, सब कुछ छोड़ छाड़ के पड़े रहते हैं, लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, सबकी प्रायोरिटी अलग अलग है, सब एक टाइप के नहीं होते। तो मूल शंकर को की प्रायोरिटी शायद यही थी कि मुझे ये रियलिटी में जानना है। तो उसके बाद उसने खूब पढ़ाई किया। वैसे ब्राह्मण परिवार के होने से वेद वगैरह पढ़ना, हमारे यहां वेद पढ़ने का मतलब रट लो, हर चीज को रटाई देते हैं तोतों की तरह, समझ तो कुछ होता नहीं है। बड़े से बड़े पंडित को बुलाओ, यहां हिस्टन में भी मिल जाएंगे, घंटों तक उनसे वेद पाठ कराओ, सस्वर करेंगे, हाथ हिला के, मुंह हिला के, चोटी हिला के, अर्थ पूछो, किसी को नहीं पता। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, एक बार उन्होंने सुनाया एक संस्कृत के सम्मेलन में, बोले देखो आप लोग सब अपनी संस्कृत भाषा का जो सबसे पहला विनाश है वो आप ही लोग करते हो। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, बोले एक बार लखनऊ में जब मैं एमपी सीट जीता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट, तो मेरी वहां स्वागत के लिए एक बहुत बड़ी सभा की गई थी। जैसे भारत में ट्रेडिशन है, कोई भी सभा होती है, पॉलिटिकल हो, एकेडमिक हो या नॉर्मल हो, तो शुरू में वेद पाठ वगैरह करते हैं। तो उन्होंने चार पांच वेद पाठी पंडितों को बुलाया था और उनको 5-7 मिनट टाइम दिया था, पर वो लंबा खींचते गए, 10-15-20 मिनट तक पाठ करते गए। तो वाजपेयी जी ने कहा कि ये बंद करो, इसको कम करो, उतने टाइम में इसका अर्थ बता दो, 4-5 मंत्र बोलो और उसका अर्थ समझाओ। अब वो पंडितों को तो अर्थ आता नहीं है, अब वो लगे शुरू, जी अर्थ नहीं बताया जा सकता, पाप होता है, यहां तो पता नहीं कैसे कैसे लोग बैठे होंगे, अर्थ सुनेंगे तो नरक हो जाएगा, ये हमारे लिए पाप है कि पब्लिक में अर्थ बताना। तो वाजपेयी जी ने बोला, मुझे पता है वो मूर्ख है, उनको कुछ नहीं आता है, पर अपनी मूर्खता छुपाने के लिए वो शास्त्रों को, धर्म को, भाषा को बदनाम करते हैं कि पब्लिक में नहीं बताया जाएगा। इसी तरह तोतों की तरह हमारी शास्त्र पढ़ने की परंपरा बनी हुई थी या है, अभी भी है। तो स्वामी जी को, मूल शंकर को समझ में नहीं आया, घर छोड़ के भाग गए समझने के लिए। सालों साल 25 साल तक हिमालय से लेकर के महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तक घूमते फिरते रहे, हजारों तरह की, जैसे कि भारत में अलग अलग सेक्ट है, अलग अलग आश्रम है, अलग अलग विचार है, हर तरह के आश्रमों में गए, हर तरह के गुरुओं के पास, साधुओं के पास, सन्यासियों के पास जाए, हर तरह के योग सीखा, ज्ञान लिया, पर वो सब वही रटी रटाई तोती तोता के तरह परंपरा है, जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, समझ नहीं आया, कॉमन सेंस को एक्सेप्ट नहीं हुआ ये सब चीजें, किताबी चीजें पर कभी अंदर नहीं उतरता है। आखिर में किसी ने बताया, मथुरा में बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, शास्त्र के भी बड़े ज्ञानी और वैसे ही बड़े एनलाइटनमेंट उनके अंदर है, बुद्ध पुरुष हैं, रियलाइज्ड पर्सन है। मथुरा में गए, उनका नाम था विरजानंद, फोटो आप देखेंगे वहां पर। मजे की बात है कि ये प्रज्ञाचक्षु थे, ब्लाइंड थे, उनको दिखता नहीं था, अंधे थे। 2-4 शिष्य उनके होते थे जो उनके कुटिया में आते थे मथुरा में यमुना के किनारे, उनको पढ़ाते थे। उनके कुछ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस पूरा करो तभी पढ़ाते थे, नहीं तो नहीं। शास्त्रों के भी उद्भट विद्वान थे और बड़े रियलाइज्ड पर्सन भी थे। स्वामी दयानंद जी पहुंचे तब वो मूल शंकर से ब्रह्मचर्य दीक्षा लेकर के चैतन्य बन गए थे, शुद्ध चैतन्य, बाद में स्वामी दयानंद, पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, झोपड़ी का अंधेरा था, रात को काफी देर हो गई थी, 9-10 बज चुका था। तो स्वामी जी विरजानंद जी अंदर से बोले, कौन हो भाई? बोला, यही जानने के लिए तो भटक रहा हूं और आपके पास आया हूं। विरजानंद जी को लगा कोई अनोखा लड़का होगा, दरवाजा खोला, बेटे क्या चाहिए? या आपसे पढ़ना है, सीखना है, कुछ समझने की कोशिश करना है, सुबह बात करेंगे। सुबह हुआ तो स्वामी जी का पहला शर्त था विरजानंद जी का, मैं उन्हें तभी पढ़ाऊंगा जब तू जितने कुछ पढ़े हुए हो सबको ये कसम खाओ कि सबको भूल जाओगे, अभी तक जितना कुछ सीखे हो, और जो भी तेरे पास किताबें हैं सब यमुना में बहा करके आओ, क्योंकि जब ऑलरेडी इतने सारे कचड़े दिमाग में लेकर घूमते हो ज्ञान के नाम पर, फिर मैं जो दूंगा वो भी उस कचड़े के साथ ही कचड़ा बन जाएगा। यही होता है, कितनी अच्छी बात करो पर जो मैसेज जाता है वो अच्छी चीजें नहीं जाती है, वो हमारे दिमाग में पहले से जमे हुए जो मेमोरी है वो उसके साथ घोल मिल के एक अलग टाइप का ज्ञान बन के घर तक पहुंचता है। जब हम बात को अपने पति या पत्नी या दूसरों से शेयर करते हैं, वो ज्ञान नहीं जो सुनकर के आप गए हो, वो ज्ञान जो आपकी अपनी जो बिलीव सिस्टम है उसको मैच करने वाला या नहीं भी करता है उसको मैनिपुलेट करके मैच करा के बोला जाता है। ज्यादातर यही होता है, इसीलिए मुझे तुम्हारा कोई पुराना ज्ञान जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगे कि मैं आज से इसका यूज नहीं करूंगा, सवाल नहीं पूछूंगा इन चीजों के बारे में, तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। और वही अंधे प्रज्ञा चक्षु जिसको हम कहते हैं, विरजानंद जी के ज्ञान से मूल शंकर को समझ में आया कि हिंदू धर्म की क्या समस्या है, कहां प्रॉब्लम है, ओरिजिनली वो धर्म क्या है, किस रूप में वो आज चल रहा है और क्या करने की जरूरत है। पढ़ाई के बाद स्वामी जी निकले, फक्कड़ थे, कुछ था नहीं, गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दें? बोले, मेरे पास तो कुछ है नहीं, 2-4 लौंग है, लौंग समझते हैं, तो ये लौंग ले लीजिए। विरजानंद ने कहा, रहने दो तेरी दक्षिणा, अगर देना चाहते हो ये लौंग से काम नहीं चलेगा, मुझे तुमसे कुछ प्रॉमिस चाहिए। मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग सीखने के लिए आते हैं, पर वो ज्ञान सीखने के लिए आते हैं, प्रोफेशनल बनने के लिए। तुम्हारे अंदर मैंने वो तड़प देखा है, इसीलिए मुझे ये प्रॉमिस करके जाओ, तू और जिंदगी में और कुछ नहीं करेगा, जो सीखे हो जाने हो उसके बाद उसको प्रचार करो और समाज में बोलो, जो गलतियां हैं जो बुराइयां हैं उसको सामने रखो और उसके उस ठीक करने का रास्ता बताओ। मुश्किल काम है, यू हैव टू गो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर, तो मुश्किल ज्यादा होता है, लोग वही सुनना चाहते हैं जो उनके ऑलरेडी बिलीफ सिस्टम है। अगर वही भी नहीं बोल सकते हो, आसपास थोड़ा किनारा किनारा के करके भी बोल दो तो भी लोग मान जाएंगे, पर पूरा सारा का सिरा उल्टा बोलने लगोगे तो कुछ नहीं होगा। पर स्वामी जी ने वो ठाना, आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य वही बनाया। देवियों सज्जनों, जो उनका मेन मैसेज था जिंदगी भर, बैक टू वेदाज और वैदिक स्क्रिप्चर्स, उनको जो समझ में आया हिंदू धर्म में शास्त्रों के नाम पर, ज्ञान के नाम पर इतने सारे कूड़े कचड़े पढ़ाए जाते हैं जिसके कारण ये सारी समस्याएं हैं। जब तक हिंदू जाति अपने मूल धर्मों को, मूल शास्त्रों को नहीं जानेगा, वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र इनको नहीं जानेगा, उन शास्त्रों की क्लासिफिकेशन को नहीं समझेगा, तब तक इनका भला नहीं हो सकता। आज भी बंधुओं आप देखेंगे किसी को भी राम की अगर बात भी करेंगे रामायण के नाम पर रामायण की कोट नहीं करेंगे, वो रामचरितमानस तुलसी का और किसी का कोट करेंगे। फेक करेंसी इतना चल पड़ी है हिंदू धर्म में, शास्त्र अब ओरिजिनल शास्त्र का नाम भी कोई लेने वाला नहीं। राम के बारे में बात करनी हो तो वाल्मीकि रामायण अकेली है, बाकी तो सारे पोएट्री है, पोएम्स हैं, काव्य हैं। जहां इमेजिनेशन ज्यादा है वाल्मीकि रामायण के बेस्ट पर अपने अपने समय के हिसाब से काफी मॉडिफाई किया है। ऐसा नहीं कि तुलसी ने कोई गलती की, कंबू ने कोई गलत किया, ज्ञानेश्वरी ने कोई गलती किया, उन्होंने अपने अपने हिसाब से बिलीफ सिस्टम के हिसाब से रामायण के आधार पर बड़े बड़े काव्य लिखे, पर वो कोई अथॉरिटी नहीं है राम को समझने जानने के लिए। अब तो वो भी नहीं बचा रामचरितमानस या कंबू रामायण या अमुक रामायण, अब तो टीवी सीरियल देख करके हम रामायण के ऊपर एक्सपर्ट बनते हैं। रामायण और महाभारत पर लेक्चर देने वाले 90% लोग आपको यूएसए में भी मिल जाएंगे, उनका बेस ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज है कि उन्होंने टीवी सीरियल देख के पढ़ा है। ये छोटा सा उदाहरण दिया कि सिंपल एक स्टोरी बुक है राम की कथा रामायण, वो ओरिजिनल रामायण भी हम भूल चुके हैं, हम और दूसरे चीजों में फंसे पड़े। तो इस तरह हमने शास्त्रों के साथ जो खिलवाड़ किया, हमसे करवाया गया, तो स्वामी जी का था कि जब आप शास्त्र पढ़ने लगोगे अपने ओरिजिनल शास्त्रों को, तब जाकर के तुम्हें अपने धर्म संस्कृति अध्यात्म के विषय में सही ज्ञान हो पाएगा। और उसके बाद तो उन्होंने प्रचार करने निकले पूरे जीवन, कहीं लोगों ने उसको मेस्मराइज होकर के सुना, कहीं पत्थर फेंका, कहीं गालियां दी, कहीं रेस्पेक्ट किया, सब तरह की चीजें एक्सेप्ट किया। और जो चीजें उन्होंने लोगों के सामने रखने की कोशिश की कि हमारे कल्चर में, सोसाइटी में और रिलीजियस ट्रेडिशन में जो बुराइयां आई, जिसको आज, उस समय तो छोड़िए, आज तक भी कोई हाथ लगाने की कोशिश नहीं करता, कोई धर्माचार्य, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई महात्मा, कोई पंडित इन चीजों के बारे में बोलना ही नहीं चाहता। स्वामी जी उन सब चीजों पर जोर देने लगे कि ये जो सच आइडल वर्शिप, पॉलीथेइज्म, मतलब बहुत सारे भगवान हैं। कभी कभी हमें लोग पूछते हैं मुझे कि आपके वहां तो मूर्ति नहीं होती है, तो आप यज्ञ करते हैं, किस भगवान को, किसको आहुति देते हैं? उनके भगवान को देते हैं, ईश्वर को। कौन भगवान? तो कौन भगवान, अब ये हमें ही 2 मिनट लगता है समझने में। मतलब कौन सा भगवान, मतलब भगवान कितने होते हैं ना, बहुत सारे भगवान होते हैं ना। हमने कहा हमने तो एक ही पढ़ा है, जिसने दुनिया बनाई, दुनिया को पालता है, दुनिया को श्रृंगार करता है। आप हमारा ये सूरज, ये नक्षत्र, ये तारे, सबका मालिक है, वो एक ही है। ऐसा हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि हमारे लिए मुश्किल है ये समझ पाना कि वो ईश्वर एक है। और कमाल की बात है, ये हमारे शास्त्रों में वेद से लेकर अंतिम कोई मॉडर्न से मॉडर्न किताब तक भी यही हमने हिंदू धर्म में बताया गया। पर हर हिंदू कंफ्यूज है कि भगवान हजारों है, ये बड़ी बीमारी है। इससे बेटर एथिस्ट है, जो नास्तिक है, कम से कम उसके अंदर डाउट्स है, वो क्वेश्चन पूछता है। और जिसके अंदर कोई डाउट्स नहीं है, पैदा इसी हर चीज को एक्सेप्ट करता है, ये काला है ये होगा, ठीक है, नहीं ये सफेद है, ठीक है, ये लाल है, ठीक है। कैसा आदमी है, कैसा इंसान हो, जानवरों के भी डिस्क्रिमिनेटिव पावर होता है देवियों सज्जनों। हर चीज कैसे काला हो सकता है, सफेद भी काला, काला भी काला, लाल भी काला, नहीं होता है ऐसा। वो तभी होता है जब वो दिमाग पूरी तरह बंद हो गया हो, शास्त्रों से दूर भाग चुके हो। स्वामी जी इन्हीं चीजों को बताने की कोशिश किए थे। अनमेनी सोशल स्टिग्माज, कास्टिज्म, और ऐसा नहीं कि वो 18th-19th सेंचुरी में स्वामी जी के समय सिर्फ था, आज भी है। खाली आज नहीं, पढ़े लिखे लोगों में भी भरपूर है। खाली पढ़े लिखे नहीं, जो भारत से बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएसए में भी 40-50 साल से रहते, यहां भी कास्ट के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन बनाते। समझ क्लियर अभी भी नहीं है, अपने आप को पढ़े लिखे मानते हैं। शर्म आती है जो पढ़ा लिखा आदमी अपने आप को किसी कास्ट से जोड़ता है, मुझे बड़ा शर्म आता है ऐसे व्यक्ति पर। मुझे उसके आईक्यू पर डाउट होने लगता है। पैसा कमाने की ठीक है, उसमें अंदर स्मार्टनेस है, पर उसके आईक्यू पर मुझे पर्सनली बड़ा डाउट होता है जो अपनी कास्ट के बारे में ज्यादा समझता है या मानता है। अनटचेबिलिटी, ऐसा नहीं कि ये सब खत्म हो चुके हैं, आज भी हैं। चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चे बच्चियों की शादी कराना, पॉलीगेमी, बहुत सारे स्त्रियां रखना, फोर्स्ड विडोहुड, एक तो 8-10 साल में लड़की को शादी करा दो, उनमें 10%, 15%, 20% जब सचमुच जवान होते हैं, 20-25-30 साल के होते हैं, विडो बन जाते हैं। तो दो ऑप्शन है। कुछ राज्यों में है कि भाई पति मरा तो पति के साथ तुम भी कूद के मरना पड़ेगा, जबरदस्ती आग में। अभी बड़े ग्लोरीफाई हो रही थी, आप देख रहे होंगे, ये मूवी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। समझ में नहीं आता है, पॉलिटिकल लीडरों को तो वोट चाहिए, ठीक है, पर पढ़े लिखे लोगों की बात समझ में नहीं आती थी, क्यों आप उसमें कूदते हो, किस चीज की ग्लोरीफाई करते हो। और अगर नहीं तो जिंदगी भर एक 20-22 साल की लड़की, क्योंकि 7-8 साल में उसकी शादी हो गई थी और उसका पति किसी कारण से 15-17-18-19 साल के उम्र में मर गया, तो जिंदगी भर वो वीडो रहेगी। खाली रहे तो कोई बात नहीं, चलो आगे शादी नहीं करनी, नहीं, सफेद कपड़ा पहनेगी, जमीन पर सोएगी, कोई अच्छे खाना नहीं खा सकती है। शादी ब्याह घर में कोई भी अच्छा काम हो वो छुप के दरवाजे के अंदर रहेगी, क्योंकि उसको देखते ही अशुभ हो जाएगा। किसी पुरुष से बात नहीं कर सकती है, मिलना तो दूर की बात है। हजारों पाबंदियों के साथ किसी स्लेव अफ्रीकन से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर होती थी, आज भी होती है। कभी आपको संदेह हो, वृंदावन चले जाइए, काशी चले जाइए, देखिए कैसे हजारों लाखों की विधवाएं, 15-18 साल से लेकर के 70-80 साल की विधवाएं, जिनको इतने ज्यादा टॉर्चर करने के बाद या उनको भगा दिया गया घर से, वो वृंदावन में, मथुरा में किसी ये स्ट्रीट काओ या डॉग की तरह घूमते फिरते रहते हैं, भीख मांगते हैं, आश्रमों में रहते हैं, उनके भी महंत लोग शोषण करते हैं अलग अलग। तो ये एक एक प्रॉब्लम को डीपली जाएं तो ये बड़ी भयंकर स्थिति है। और ये सब एक ही सोसाइटी में हो रहा था या अभी भी हो रहा है। डाउरी, शादी करना है लड़की से तो पैसा दो तभी शादी करूंगा तुमसे। अब मां बाप बड़े बड़े गर्व के साथ कहेंगे, बच्चे लड़के को पढ़ाया लिखाया, इतना खर्च किया तो आपको तो देना पड़ेगा। और ये सब क्यों है? धर्म के नाम पर इग्नोरेंस टुवर्ड्स वैदिक स्क्रिप्चर्स। क्योंकि हमें अपने शास्त्रों के बारे में, हमें मतलब आम आदमी नहीं, इवन वो सो कॉल्ड पंडित लोगों को अपने शास्त्रों के ना पढ़ने का ज्ञान है, ना पढ़ाने का ज्ञान, ना समझता। और इस तरह हजारों अलग अलग सुपरस्टिशियंस जिसकी कोई सीमा नहीं है, गंगा में डुबकी लगाओ सारे पाप माफ हो जाएंगे, ये करो सारे पाप माफ हो जाएंगे। इस तरह के जितने भी एविल प्रैक्टिसेस हैं उन सबके खिलाफ स्वामी जी ने डंके के चोट पर सोसाइटी में घूम घूम करके प्रचार करने लगे, डिबेट करने लगे। प्राचीन काल में उसको कहते थे शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ मतलब डिबेट करो, प्रूफ रखो कि ये सही है या गलत, शास्त्रों का प्रमाण दो, लॉजिकली प्रूफ करो, शास्त्रों के प्रमाण से प्रूफ करो। पब्लिक में डिबेट हुआ करता था जो कि धीरे धीरे बंद हो गया। हमारे प्राचीन परंपरा में, शास्त्र परंपरा में ये हुआ करता था। तो स्वामी दयानंद ने रिवाइव किया, अलग अलग जगह जाकर के ज्ञानियों को, विद्वानों को वो चैलेंज करते थे, आओ इस पर्टिकुलर टॉपिक पर शास्त्रार्थ करो, अगर आपको आप हारते हो तो पब्लिक में अनाउंस करो ये सब गलत चीजें हैं। और उसका परिणाम है कि उनके शत्रु भी बहुत बढ़े। सो स्वामी दयानंद शोड द हिंदूज हाउ गोइंग बैक टू द रूट्स ऑफ देयर फेथ द वेदाज दे कैन इम्प्रूव देयर लॉट एज वेल एज द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ देन इंडिया। ऐसा नहीं है कि स्वामी दयानंद जी पहला व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदू धर्म में बा इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म करने की कोशिश की, ऐसा नहीं है। बहुत सोशल रिफॉर्मर रहे हैं और खास करके 17th, 18th, 19th century में सैकड़ों संख्या में आए, क्योंकि वो समय सच कहिए हमारे धर्म के सोसाइटी का बड़ा डार्क एज था। इतनी ज्यादा सुपरस्टिशियन होना सब सोसाइटी में थोड़ा बहुत होता रहता है, पर सुपरस्टिशियन के नाम पर इतने ज्यादा टॉर्चर करना लोगों को, स्त्रियों को, शूद्रों को, और भी अपने घर में 50 चीजों को, इतनी सारे टॉर्चरिंग चीजें था। इसीलिए बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर 17th, 18th, 19th century में आए, अपने अपने ढंग से रिफॉर्म करने की कोशिश की। कुछ सफल हुए, कुछ थोड़ा सफल हुए, कुछ ज्यादा सफल हुए, पर उसमें 99% सोशल रिफॉर्मर वो थे जो वेस्टर्न एजुकेटेड थे, और उनको अपने हिंदू धर्म के शास्त्र वगैरह के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। उनको लगता था ये जो कुछ इंडियन सोसाइटी में हो रहा है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिंदू रिलीजियन, हिंदू धर्म। तो वो सोशल रिफॉर्म के नाम पर जो लाते थे वो क्रिश्चियनिटी होता था, वो वेस्टर्न कल्चर लाते थे, क्रिश्चियन कल्चर लाने की कोशिश करते थे। वो राजा राम मोहन राय हो, वो तमिलनाडु में पेरियर से लेकर, या कुछ भी हो। और उससे या तो व्यक्ति नॉन इंडियन हो जाता था, नॉन हिंदू हो जाता था, या एंटी सोशल रिफॉर्म हो जाता था। बंगाल में बहुत मूवमेंट चला क्योंकि वहां क्रुएलिटी भी बहुत थी, सुपरस्टिशियन के नाम पर, इनके नाम पर आज भी बहुत है बंगाल में, बिहार में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। जो सो कॉल्ड बहुत एजुकेटेड, सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग यहीं से निकलते हैं, पर सबसे ज्यादा गड़बड़ियां भी यहीं पर मिलती है। पर स्वामी दयानंद एक अलग टाइप के धुन में आए। प्रॉब्लम हमारे शास्त्रों में या कल्चर में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे इग्नोरेंस में है। इसीलिए आपको ठीक बनाने के लिए, अच्छा बनने के लिए आपको वेस्टर्न बनने की जरूरत नहीं है, आपको वेस्टर्न फिलॉसफी से ही आप चेंज हो गए ये जरूर, ये गल इसकी जरूरत नहीं है। पढ़ना गलत बात है, आप अपने आप को अच्छा बना सकते हो अपने शास्त्रों के द्वारा। हमारा कोई भी शास्त्र ये सब रिकमेंड नहीं करता। जिस दिन आप सही शास्त्रों को समझ जाओ तो आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। इसीलिए वो स्वामी दयानंद पहला व्यक्ति है जो इंडिजिनियस वे में अपने अंदर अपनी चेंजेस करने की कोशिश करते थे। महिलाओं की एजुकेशन को बढ़ावा देना हो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव करना हो, जिसमें गरीब का बच्चा हो, धनी का बच्चा, शूद्र का लड़का हो, ब्राह्मण का बच्चा हो, लड़का हो, लड़की, सबको बराबर शिक्षा मिले, उपनयन संस्कार सबका हो। उपनयन संस्कार आपको आजकल समझ में आता हो नहीं आता हो, जनेऊ संस्कार, पर इंडियन सोसाइटी में उस जमाने में और आज भी जो रूरल इंडिया में इसकी बड़ा मायने होता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए। तो ये एक पावर है उपनयन संस्कार, ये एक राइट आता है आपके पास कि आप पढ़ सकते हैं, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन। स्वामी दयानंद पहला व्यक्ति है जिन्होंने स्वराज्य का, पॉलिटिकली स्वराज्य का भी आह्वान किया, सेल्फ गवर्नेंस एंड स्वदेशी इंडिजिनियस चीज को, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी था भारत। और उनका एक बड़ा सुंदर डायलॉग बार बार वो रिपीट करते हैं, कोई भी सरकार शासन कितना भी अच्छा हो, स्वराज्य से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। स्वराज्य मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, जहां हम लोग हमारे ऊपर शासन करें, बाहर विदेशी सरकार कितने भी अच्छे हो, स्वराज्य से बेहतर नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं कि स्वामी जी ने सिर्फ रिलीजियस या सोशल रिफॉर्म करने की कोशिश की, वो जो नेशनलिज्म की, जो पेट्रियटिज्म की, देशभक्ति का भाव भी एक साधु होने के, शायद हमारे इसमें धार्मिक फील्ड में ये देशभक्ति के बारे में पाठ नहीं पढ़ाया जाता था। शायद पहला बार आर्य समाज है जिसके मंच में देशभक्ति की बात भी की जाती थी, सिर्फ आत्मा परमात्मा की बात नहीं। और उसका परिणाम हुआ कि जो प्री, जो इंडिपेंडेंस के जो शुरू शुरू के अर्लियर मूवमेंट में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट से निकले, क्योंकि स्वामी जी का साउथ में जाना नहीं हुआ था, साउथ में उनका प्रभाव नहीं था क्योंकि वो गए भी नहीं थे। उस समय के ज्यादातर जो फ्रीडम फाइटर हुए या शहीद होने वाले लोग थे, वो मोस्टली, नॉट ऑल, मोस्टली आर्य समाज से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। बहुत सारे नामों की लिस्ट यहां है और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे। और डेमोक्रेसी का कंसेप्ट रिलीजियस फील्ड में शायद पहली बार स्वामी दयानंद लाए। ज्यादातर आप देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, रिलीजियस, सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, उसका जो हेड होता है कोई रिलीजियस पर्सन होता है, आचार्य होता है। स्वामी जी ने नहीं, ये गुरुडम बनता है इससे, गुरुडम समझते हैं, एक गुरु बन जाता है बाबा आचार्य, और वो काले को सफेद कहे, सफेद को काला कहे, वही सही होने लगता है, और यहीं से सुपरस्टिशन पनपता है, और ये बड़ा खतरनाक है। उन्होंने नहीं, आर्य समाज में को चलाने वाले लोग होंगे और वो इलेक्शन से चुने जाएंगे। डेमोक्रेसी वो आर्य समाज में 18th-19th century में लाए। स्वदेशी, खुद की चीज को अक्ष करो, ब्रिटिश चीजों को बहिष्कार करो। और सिर्फ इतना नहीं, उस समय भाषाओं की इतनी झगड़ा थी, वो पहला शायद व्यक्ति होंगे, क्योंकि 18th century और 19th century के बीच के हैं, जिन्होंने ये घोषित किया कि हिंदी आर्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, ये श्रेष्ठ लोगों की भाषा है, सब भारतीयों को हिंदी बोलनी चाहिए अपनी मातृभाषा के साथ। उनका कोई मिशन नहीं था कि कोई अलग रिलीजियन या कोई सेक्ट बनाया जाए, जैसे बाबा लोग बनाते हैं अपना एक अलग सेक्ट, अपना एक अलग फॉलोअर्स बने, नहीं। वो बार बार अपने सब किताबों में सत्यार्थ प्रकाश लेकर सब जगह कहते हैं, मेरा कोई अपना इंटेंशन नहीं है कि कोई मेरा कोई फॉलोअर बने, मैं कोई सेक्ट बनाऊं। वो कहते हैं वेद से लेकर जैमिनी तक जितने ऋषियों ने जो कुछ कहा, मैं उन्हीं के साथ हूं, उन्हीं को मानना, उन्हीं को पालना, मनवाना पलवाना मेरा काम है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं। और आर्य समाज बना इसीलिए 1875 में मुंबई में पहला उन्होंने बनाया कि लोगों को अपने शास्त्रों को जानने के लिए प्रेरित करो, सही ईश्वर जानने के लिए उनको रास्ता बताओ, पर खुद ईश्वर या ईश्वर का प्रोफेट बन के मत बैठ जाओ। जो मोटो बनाया कृणवंतो विश्वम आर्यम, दैट मीन्स मेक दिस वर्ल्ड नोबल, ये ऋग्वेद का एक मंत्र है। वो आर्य रेस बनाना नहीं, आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है, नोबल होता है। जब मैं बोल रहा हूं इसका अर्थ नहीं कि कोई आर्य समाज मेंबर को देख के आपको लगे ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आर्य समाज का ओवरऑल व्यू एंड स्वामी दयानंद जी की व्यू की बात करता हूं, हर इंडिविजुअल इज डिफरेंट। अगर आपको कोई लोग ऐसा ना मिले, इट्स देयर प्रॉब्लम एंड योर प्रॉब्लम। और जो स्वामी जी ने जो आर्य समाज के 10 नियम बनाए, आपके दोनों साइड में लिखे होंगे 10 प्रिंसिपल्स, कभी पढ़ें, जरूर पढ़ें, बहुत सुंदर है। उसका जो जिस्ट है, 5 प्रिंसिपल में उन्होंने बार बार ट्रूथ को रिपीट किया, सत्य को जानना, सत्य क्या है वगैरह वगैरह वगैरह। और जो लास्ट 5 प्रिंसिपल है वो है कि सोसाइटी ऐसा करो जिससे तुम्हारा सिर्फ नहीं सोसाइटी का भी भला हो। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार चलो, संसार का उपकार करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, खुद की उन्नति में खुश मत रहो, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति देखो वगैरह वगैरह वगैरह। पहला 5 सत्य को ढूंढो जानो, लास्ट 5 उसको इंप्लीमेंट करो, नॉट फॉर सेल्फ, फॉर कम्युनिटी, फॉर सोसाइटी लास्ट। और इसीलिए उन्होंने आर्य समाज को का जो बनाया कि लोगों को ये लोगों तक मैसेज पहुंचाओ, अपने अपना मैसेज नहीं, मेरा मैसेज नहीं, वेद के बारे में, शास्त्रों के बारे में जो लिखा है उस चीजों को, उन चीजों को लोगों तक पहुंचाओ। सो आर्य समाज डिस्करेजेस डोगमा सिंबोलिज्म एंड दैट रन कंट्ररी टू कॉमन सेंस एंड लॉजिक। सिंपल सी बात है, आर्य समाज की जो स्रोत है स्वामी दयानंद जी का एक सिंपल थ्योरी है, कोई भी चीज जो तुम्हारे कॉमन सेंस को नहीं जमता, जो लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है, वो झूठ है। झूठ नहीं भी अगर है भी, तुम्हें उसको मानना नहीं चाहिए। जब तक तुम्हारा कॉमन सेंस रीजनिंग फैकल्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और अगर ये लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है, डोंट एक्सेप्ट इट। जनरली झूठ है, कभी कभी सच हो भी सकता है कुछ चीजें, क्योंकि हमारा कॉमन सेंस इतना पावरफुल नहीं होता है, पर टिल योर कॉमन सेंस एक्सेप्ट इट, डोंट एक्सेप्ट। ये सिंपल सी थ्योरी थी। आखिर में मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहूंगा, स्वामी जी के बहुत सारे बुक्स हैं, कभी मौका मिले सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़िए। आप लाइफ में कुछ भी करें, कहीं भी रहें, कोई भी बुक पढ़े, कैसा भी चीज फॉलो करें, जरूर पढ़ें। और खास करके 1 से 10 चैप्टर तक तो जरूर पढ़ें मौका मिले तो। आप देखेंगे 10वां चैप्टर पूरा होते होते आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, सोच में बदलाव आएगा, समझ में बदलाव आएगा। आज के इस शुभ दिन पर हम उस महान आत्मा को प्रणाम करते हैं जिनके ऊपर हजारों बार अटैक हुआ, जहर पिलाया गया, पागल हाथी छोड़े गए, तलवार से मारने की कोशिश की गई, क्योंकि यही सब बात करते थे, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर, और आखिर में उनको जहर देके मारा गया। और जिसने जहर देके मारा भी किसी राजा के कहने पर, जब पता चला वो उनका रसोईया था जिन्होंने, जो उनके साथ रहता था नेपाल का, जब पता चला कि इसने जहर मिलाया मेरे दूध में, जहर और कांच का गूंद पाउडर मिक्स करके, तो उसको बोला तूने मिलाया था, उसका नाम जगन्नाथ था। जी हाँ जी, ऐसे मिलाया, वो जोधपुर के राजा ने मुझे बोला ऐसा किया। पर चुप बदमाश, ऐसा करो किसी को बताना नहीं, रात होने से सुबह होने से पहले पहले ये राज्य छोड़ के भाग जाओ। उनके पास जो भी स्वामी जी के पास पैसा फैसा था सब अपने हत्यारे को पैसा दिया, बोले इसको लेकर भाग जाओ नहीं तो लोग तुम्हें मार देंगे सुबह सुबह। अपने हत्यारे को ही उन्होंने सारे पैसे देकर के अपना भगा दिया। इतनी करुणा से भरा हुआ व्यक्ति था, पर जब पब्लिक में आता था तो किसी से डरता नहीं था। दया भी वही कर सकता है जो निडर है, डरपोक आदमी क्या डर दया करेगा। देवियों सज्जनों, ऐसे महान पुरुष को हम सब प्रणाम करते हैं आज के इस अच्छे दिन पर। आप जरूर उनकी जीवनी को चाहे तो पढ़ें, कुछ नहीं तो सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ें, जीवन में आपके सोच में समझ में काफी परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।